नमस्कार श्रोताओं, छिंदवाड़ा वालेन से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है जलवायु परिवर्तन। आजकल के परिवेश में जलवायु मानव जीवन के लिए कितनी प्रभावी है, साथ ही जलवायु के कारण व्यक्तियों के खान पान, उनके स्वास्थ्य और जो दिनचर्या है उसमें भी किस तरीके से परिवर्तन देखे जा सकते हैं, साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण खेतीबाड़ी और मानवीय जीवन पर इसका किस तरीके से असर देखा जा रहा है, इसी को लेकर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं शासकीय महाविद्यालय के जनसेवा भागीदारी समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी अंबड़कर। सर, मोबाइल लाइन पर स्वागत सर आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
सर, क्या देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण मानव जीवन पर किस तरीके से प्रभाव देखा जा रहा है?
जलवायु परिवर्तन जो है ये हमारी अपनी गलतियों का परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। हम लोगों ने प्रकृति के साथ जिस प्रकार से छेड़छाड़ किया, प्रकृति को जिस प्रकार से हम लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण उसका शिकार किया, तो उसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। और भाई, हम लोग प्रकृति कुछ देती नहीं है, हमेशा लौटाती है। हम लोगों ने जो प्रकृति को दिया है, प्रकृति उसको लौटा रही है।
सर, क्या देखते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण व्यक्तियों के खान पान पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है? सर, क्या इसका प्रभाव को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाएं कि व्यक्तियों के खान पान के कारण उनके स्वास्थ्य पर भी असर देखने को मिल रहा है?
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो है वो संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है, केवल मानवों के ऊपर पड़ रहा ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जानवर है, यहाँ पर पेड़ पौधे है, यहाँ पर सब कुछ है, सूक्ष्म जीव भी है, वो सबको प्रभावित कर रही है। और इसका मतलब केवल खान पान के कारण हो रहा ऐसा नहीं है। तो इसका ये जो है ये हमारी कंप्लीट जो दिनचर्या है, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर चीज पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। और प्रभाव इतना निगेटिव पड़ रहा है कि पहले लोग शारीरिक और मानसिक रूप से इतने ज्यादा बीमार नहीं हुआ करते थे, इतने ज्यादा परेशान नहीं हुआ करते थे। आज लोग शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार है, परेशान है और डिस्टर्ब लाइफ को जी रहे हैं। पहले डिप्रेशन, सुसाइड जैसी बीमारियां बहुत कम थी या नहीं थी। आज डिप्रेशन और सुसाइड जैसी बीमारियां बढ़ रही है। हर 3 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। और हर मतलब ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी सुसाइड करने का विचार भी आता है। ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण भी हो रहा है। मतलब उसका प्रभाव केवल शरीर पर नहीं पड़ रहा है, तो हमारे मन पे भी पड़ रहा है, हमारे हर चीज पे पड़ रहा है। इसलिए अब इसको रोका कैसे जाए? तो देखिए, जब तक हम लोग ये इस बात पर विचार नहीं करेंगे कि भाई हम लोगों प्रकृति ने हमको कुछ दिया नहीं, प्रकृति ने हमको लौटाया है। हमने प्रकृति का जिस तरीके से शोषण किया है, दोहन किया है अपने स्वार्थ के लिए, तो उसके परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। अब जिस दिन हम लोग प्रकृति का शोषण की जगह प्रकृति का पोषण करना शुरू कर देंगे, पोषण करने का मतलब ये है कि अब आप सोच सकते हैं, एक उदाहरण से बता रहा हूं मैं कि नदियों में रेत जो है, प्रकृति हमको रेत मुफ्त में देती है। और जो रेत हमको मुफ्त में मिलती है वो रेत हम लोगों को निकाल निकाल के बेच रहे हैं। और प्रकृति का इतना शोषण कर रहे हैं कि जमीन में पानी ही नहीं जा रहा है, सारा पानी समुद्र में जा रहा है। और जमीन का वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ नहीं रहा, जमीन का वाटर लेवल धीरे धीरे घट रहा है। अब आप सोचिए, ऐसी परिस्थितियों में जब वाटर लेवल घटेगा तो इसका प्रभाव संपूर्ण प्रकृति पर पड़ेगा। मतलब पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा, जानवरों को पानी नहीं मिलेगा, इंसानों को पानी नहीं मिलेगा। तो प्रकृति में स्वाभाविक रूप से गर्मी बढ़ेगी, प्रकृति में स्वाभाविक रूप से गर्मी के दुष्परिणाम भी बढ़ेंगे। तो केवल एक लोग अपने स्वार्थ के लिए जंगल काट रहे हैं, लोग अपने स्वार्थ के लिए पहाड़ के पहाड़ काट रहे हैं। तो ये सारे भाई, ये हम लोग जो पाप कर रहे हैं, इस पाप को तो भुगतना ही पड़ेगा। जब तक हम इस पाप को बंद नहीं करेंगे, उदाहरण के रूप में यदि मान के चलिए कि हम लोगों को हमारे जन्मदिन के ऊपर क्यों हम केक काटे, क्यों ना हम हमारे जन्मदिन, हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएं। यदि हम एक आदमी 70-80 साल तक जीवित रहता है तो 70-80 पेड़ तो वैसे ही लगा लेगा। और क्यों ना भाई हम लोग ये तय कर ले कि भाई हर किसी शुभ कार्य पर, जैसे हमारे घर में शुभ कार्य होते हैं, शादी होता है या बच्चे का कोई संस्कार होता है या किसी भी प्रकार का शुभ कार्य होता है, धार्मिक कार्य होता है, तो उस कार्य पर हम लोग क्यों ना हम अपने हम लोगों को, परिजनों को घर में बुला के खाना खिलाते हैं, तो क्यों ना हम अपने मोहल्ले में, अपने गांव में 10-20-50 पेड़ लगा दें, या हम अपने मोहल्ले में, गांव में लोगों को पेड़ दे दे, पेड़ बांट दे, और उनको बोले कि आप अपने आंगन में ये पेड़ लगाइए। पेड़ बांटने की परंपरा क्यों नहीं चालू करते हैं? तो यदि हम ऐसे छोटे छोटे भी प्रयोग करेंगे तो इसके बहुत अच्छे सुखद परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, कुछ उसके परिणाम भी आ रहे हैं। जहाँ जहाँ कभी रेगिस्तान था, वहाँ बहुत जगह पे जो है अभी वहाँ पे हरे भरे जंगल खड़े हो रहे हैं। तो लोग प्रयास कर भी रहे हैं कुछ छोटे मोटे लेवल पे।
जी सर, सर के वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन को लेकर जो वैश्विक मंच से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको सर जमीनी स्तर पर किस तरीके देख रहे हैं सर?
हाँ, उसमें ऐसा है कि जो वैश्विक स्तर पे जो बड़े देश है, बड़े देश मतलब बड़े शोषक, डेवलप कंट्री जिसको हम बोलते हैं, जो विकसित राष्ट्र है, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, और अन्य ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे जो विकसित राष्ट्र है, ये विकसित राष्ट्र शोषण ज्यादा कर रहे, प्रकृति का पोषण कम कर रहे, और वो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह उठाने को तैयार नहीं है। भारत जैसे विकासशील देश उसका शोषण तो कम कर रहे हैं, हम लोग पोषण कर रहे हैं, और भारत की सरकार और इस प्रति इस विषय के प्रति बहुत सजग है, और बहुत बड़े परिवर्तन भी हो रहे हैं। जैसे मान के चले कि भारत में अब एक सोलर एनर्जी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर। हम लोग कोयले से एनर्जी पर डिपेंडेंसी जो है अपनी कम कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर हम लोग अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। तो भारत में हम लोग न केवल हरियाली बढ़ा रहे हैं, परंतु हम लोग जो है इसको हम बोलते हैं कि कोयले पर, कोयला खत्म होने वाला है एक दिन, या पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है, केरोसिन खत्म होने वाला है, चारकोल खत्म होने वाला है, हम अपनी डिपेंडेंसी भी कम कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि पेट्रोल और डीजल में 20% एथेनॉल मिलाने का डिसीजन, और ये कितना बढ़िया डिसीजन है कि भाई जो जो वेस्टेज चीजें, हमारे गन्ने से निकलने वाला जो एथेनॉल है, जो वेस्टेज चीजें फेंकने में, जलाने में जाता है, उसका उपयोग हम लोग पेट्रोल डीजल बनाने के लिए करेंगे, और पेट्रोल डीजल 20% यदि हम अपने पेट्रोल डीजल की डिमांड कम कर देंगे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो भारत अपने लेवल पे तो कर रहा है, कुछ भारत के अलावा भी कुछ अच्छे देश है, जैसे जापान है जो इस विषय में अच्छा काम कर रहा है, और भी कुछ अच्छे देश है जो इस विषय में अच्छा काम कर रहे हैं। पर जब तक एक सामूहिक प्रयास नहीं होगा तब तक इसका कुछ बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं निकलेगा। हाँ, बाकी भारत में इसके बहुत सुखद रिजल्ट आ रहे हैं।
सर क्या देखते हैं कि एक किसान अगर जैविक खेती या प्राकृतिक खेती के द्वारा किस तरीके से जलवायु परिवर्तन को अनुकूल करने में प्रयास कर सकते हैं और इसके आम जनजीवन पर किस तरीके से प्रभाव देखा जा सकता है सर?
किसान पहली बात तो ये कि किसान की हालत वैसे ही बहुत खराब है,
अच्छा
और उसको यदि अपन अचानक बोलेंगे कि भाई आप जो है फर्टिलाइजर का उपयोग, रासायनिक जो खत है उसका उपयोग कम करिए, और डायरेक्ट आप जो है बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करिए, तो ऐसा एकदम अचानक तो मुझे लगता है कि होने वाला नहीं है। पर धीरे धीरे यदि मतलब मान के चलिए कि यदि एक किसान जो है पहले साल यदि 10% बायो फर्टिलाइजर का यूज करे, अगले साल उसको बढ़ा के 20% करे, फिर ऐसा धीरे धीरे बढ़ा दे जाए, तो हो सकता है कि 5-6 साल के अंदर वो जो है उसकी डिपेंडेंसी जो है वो बायो फर्टिलाइजर पर बढ़ेगी, मतलब केमिकल से बायो पे वो आएगा। और इसका प्रभाव ये होगा कि जो हमारे, सबसे पहली बात तो हमारे जमीन की जो उर्वरक क्षमता है, द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, वो बढ़ेगी, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात जो है कि जो हमारा जो यील्ड है, हमारा जो उत्पादन है जो है, मतलब खेत से जो हम लोग उत्पादन करते, जो फल फ्रूट्स, जो सब्जियां जो है, जो अनाज जो है उसके उसमें पोषक तत्व का मात्रा भी बढ़ेगी, और उसके बाद जो है बायो फर्टिलाइजर के उपयोग से जो हमारा प्रकृति को नुकसान होता है, जैसा हमारा जैसे केमिकल फर्टिलाइजर से प्रकृति को नुकसान होता है, जैसे पानी खराब होता है, पेड़ पौधों का को नुकसान होता है, जानवरों को नुकसान होता है, वो भी धीरे धीरे कम होगा। पानी शुद्ध होना शुरू हो जाएगा, पेड़ पौधों को अच्छा पानी मिलना शुरू हो जाएगा, जानवरों को पशु पक्षियों को अच्छा पानी मिलना शुरू हो जाएगा, इंसानों को अच्छा पानी मिलना शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और मुझे मैं देख भी रहा हूँ कि भारत सरकार इसके प्रति बहुत सजग है और अच्छा काम भी कर रही है। बहुत जगह पे बहुत सारे किसान जो है इसको धीरे धीरे अपना भी रहे, बायो फर्टिलाइजर की तरफ जा रहे हैं, और उनकी डिपेंडेंसी जो है उनकी निर्भरता और केमिकल फर्टिलाइजर पर धीरे धीरे कम हो रही है, तो ये अच्छे परिणाम अभी मिल रहे हैं उसके, पर उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
जी, तो ये थे अम्बेडकर सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर जलवायु परिवर्तन विषय पर अपनी राय रखी। अम्बेडकर सर, मोबाइल वाणी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
धन्यवाद।
बड़ा वाले सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।